तो शुरू करते हैं। पहले हमारा रिकैप करेंगे हम लोग लास्ट वीक का। तो जो क्वेश्चंस हैं, पहला सवाल है, व्हाट विल लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात की ओर क्या लेकर जाएगा? वन वर्ड आंसर,
ब्रह्म ज्ञान।
वेरी गुड आंटी, थैंक यू, परफेक्ट। ज्ञान लेकर जाएगा, सिर्फ ज्ञान, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इफ ऑस्टेरिटीज डू नॉट इंश्योर सेल्फ रियलाइजेशन, देन व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन देम? यदि तपस्या आत्म साक्षात्कार सुनिश्चित नहीं करती तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं तप करने में? हाँ, रेज योर हैंड्स बेटर। हाँ रीना,
तप करने से ये आत्मज्ञान की तरफ तो खैर नहीं लेके जाता, लेकिन उसमें ये हेल्प जरूर करता है, क्योंकि उससे हमें डिसिप्लिन में आते हैं और एक नियम बन जाता है बॉडी में, संयम। जैसे ज्ञान के लिए भी तो एक अपने आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है ना, तो तप सिखाता है हमें।
बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर एकदम, कि उससे हमें ज्ञान होगा, नहीं ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो ज्ञान की तैयारी कराएगा। जो तप करने से हमारा मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, और सिर्फ एक शुद्ध चित्त ही उस ज्ञान को समझ सकता है ना, वो ज्ञान समझने के लिए। अगर मुझे किसी बच्चे को एलजेब्रा सिखाना है, उसको पहले मैथ्स आना चाहिए ना, तभी तो कुछ तो आना चाहिए, नंबर्स पता होने चाहिए ना, तभी तो उसको बता सकते हैं। पर क्या सिर्फ नंबर्स जाने से एलजेब्रा आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा, वो सीखना पड़ेगा, लेकिन नंबर्स पता होने चाहिए, ऐसे ही तप होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा, इफ आई बिलीव 100% दैट देयर इज गॉड, देन दिस इज द ट्रुथ, ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स।
अभी आंटी का हो गया, रीना का हो गया, और कौन दे रहा आंसर?
मेरा ट्रू है, फॉल्स।
अच्छा, आपका ट्रू, हाँ ठीक है, ओके। और शिवानी का आंसर है फॉल्स। अच्छा, ट्रू के लिए कितने लोग हैं? एक तो रीना है, और कौन है, और कौन बोलता है? ममता और अनीता भाभी, और कोई ट्रू के लिए? ओके, तीन लोग हैं यहाँ पे जो बोलते हैं ट्रू है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब मैं फिर से वापस वही, हम उसमें नहीं जाएंगे कि आप क्यों इसका आंसर ट्रू बोल रहे हो, ओके। हम जाएंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आत्मबोध की किताब कर रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग का एक विषय है, ये एक पर्टिकुलर पाथ है। यहाँ पर जब हम ज्ञान मार्ग का कुछ भी करते हैं, जब तक वो चीज़ हमारे तर्क से, हमारा अनुभव डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं होती, तब तक हम उसको हाँ नहीं बोलते। चाहे हमें विश्वास, यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे विश्वास है, सिर्फ विश्वास भी आपका एक, आप ये बोल सकते हो एक जरिया है, एक मतलब पाथ भी, वो आपको हेल्प करेगा आगे चलने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास से हम कह सकते हैं कि ये सच है? नहीं, हम उन चीज़ों को नहीं मानते, इसीलिए ये पाथ अलग हो जाता है यहाँ। जब तक अनुभव और तर्क से क्लियर ना हो जाए कि भगवान है आपके खुद के उससे, तब तक हम इसको ना मानते। तो जो लोग हाँ बोल रहे हैं, उनका कोई कुछ सवाल है यहाँ पे? ये हम पाथ की बात कर रहे हैं, देखो हर पाथ में प्रोसेस अलग है। जैसे जब हम क्रिया योग भी, मैं तो क्रिया योग भी कराती हूँ, क्रिया योग में कुछ और अलग आंसर होगा। तो अब हम सिर्फ, हमको ये क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये नहीं बोल रही आप भगवान को मत मानो, मैं बोल रही हूँ जब हम ज्ञान मार्ग का विषय कर रहे हैं, जब तक आपको अनुभव नहीं होता तब तक ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, हम नहीं मानते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ माई लाइफ इज गोइंग वेरी वेल एंड आई एम टोटली सैटिस्फाइड, देन डू आई नीड सेल्फ रियलाइजेशन? अगर मेरा जीवन अच्छा है और मैं संतुष्ट हूँ, तो जरूरत है क्या आत्मबोध की? कोई है यहाँ पे जो बोलता है कि जरूरत नहीं है? Anybody thinks की जरूरत नहीं है? Okay, सबको लगता है जरूरत है। Okay, तो कौन बताएगा क्यों जरूरत है? अगर लाइफ इतनी अच्छी है तो क्यों जरूरत है? जो बोल चुके हैं वो अभी रहने दे, कोई और बताएगा? अच्छा रेनू, ओके रेनू गो अहेड।
ओके, इसकी जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध ही है, जो हमको अपने असेंस को, अपने तत्व को जानना, अपनी चेतना में रहना, वही, उसी के लिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं, वो छोड़ के हम सब कर रहे हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल वही है, इसीलिए हमको आत्मबोध के लिए जाना है।
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड आंसर। और एक रेनु, इसने रितु ने भी रेज किया था अपना, कहाँ गई रितु? कोई और कुछ और ऐड करना चाहता है इसमें?
या मैं
पिछले सेशन में भी चली गई थी, बट मैं ट्राई करती हूँ, एंड प्लीज आप लोग, आप मेरे टीचर्स हो. ओके, सो इस टाइम मे बी, प्रेजेंटली टाइम मे बी आप खुश हो, बट वो भी तो द लाइफ कीप्स चेंजिंग, है ना. तो वो इट, मुझे तो ये लगता है कि ओके, सो मतलब हम क्यों, कभी अच्छा आ रहा है टाइम, कभी बैड टाइम आ रहा है, सो देन व्हाई आर वी हियर. आई थिंक दैट क्वेश्चन ड्राइव्स अस टू दैट द रियल पर्पस ऑफ लाइफ.
एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर ऋतु, बिल्कुल. कि अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लाइफ तो बदल जाएगी. अभी कल को क्या होगा क्या पता, तो कल को होगा तो फिर हम नीचे जाएंगे, है ना. तो बिल्कुल रेनू और ऋतु का अगर आंसर को कंबाइन कर दें, दैट इज अ परफेक्ट आंसर. और हमारा इवेंचुअली पर्पस क्या है, आत्मबोध ही हम जन्म लेते ही उसके लिए है कि हम अपने आप को जान जाएं. तब तक हम जन्म लेते रहेंगे एज ह्यूमन, जब तक हम अपने आप को जान नहीं जानते. ओके, वेरी गुड. चलिए, ये हमारा हो गया पिछले उसका रिवाइज, अब हम आज के उससे शुरू कर सकते हैं.
कैन यू मोनिका, कैन यू रिपीट द लास्ट आंसर, एक्चुअली वो मेरा नेट चला गया.
हाँ जी, तो लास्ट आंसर ये था कि एक तो अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन लाइफ हमेशा बदलती रहती है, तो कब बदल जाएगा नहीं पता. कल को आज अच्छी चल रही है, कल को अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी क्या पता. और हमको अपने आत्मबोध, खुद को जानना ही हमारा इवेंचुअल पर्पस है लाइफ का. उसके बिना जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम ये इस साइकिल में ह्यूमन बर्थ के, जन्म लेना मृत्यु में चलते ही रहेंगे. तो ये हमारा पर्पस है. लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही हो, उसका आत्म उससे आत्मबोध को ना जानने का कुछ लेना देना नहीं है. चाहे लाइफ खराब हो अच्छी हो, आत्मबोध होना सबसे इम्पॉर्टेंट, वही हमारा लाइफ का पर्पस है. ठीक है, चलिए अब हम इंग्लिश बुक में पेज 24 वर्स 3 से शुरू करेंगे. उसका मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ. Karma cannot eliminate ignorance, and neither can karma eliminate the effects of ignorance. Only the light of gyan can eradicate the darkness of ignorance. That is why they who are just focused on doing karma and do not take any efforts towards attaining gyan, they remain ignorant. Furthermore, it doesn't matter if the karma is self-serving or selfless. ये फर्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ देगा हिंदी में? ओके, अर्चना जी पढ़िए, सिर्फ पहला पैराग्राफ.
ज्ञान कर्म का अविरोधी है, कर्म से अज्ञान दूर नहीं होता है, और कर्म करने से अज्ञान का प्रभाव भी नहीं जाता है. विद्या विद्याम निहतन येव, सिर्फ ज्ञान की रोशनी ही तेरे इस अज्ञान को दूर कर सकती है. जिस प्रकार सिर्फ रोशनी ही अंधकार को दूर कर सकती है. कर्म करने से अज्ञान दूर नहीं होता है, ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है. इसलिए जो सिर्फ कर्म में लगे रहते हैं, वे अज्ञानी ही रह जाते हैं. फिर कर्म निष्काम हो तो, कर्म साकाम हो तो भी छूटने वाले नहीं है. बंधन अज्ञान के कारण है. यह बंधन छूटेगा ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्त होगा गुरु से. इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु के बगैर मोक्ष का साधन और कोई नहीं बता सकता है.
जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया. तो अब हमें देखो, मैंने बताया ना, ये जब हम ज्ञान मार्ग करते हैं, आत्मबोध करेंगे, तो हमारी जो मान्यताएं बनी हुई हैं यहाँ पर, वो टूटने वाली हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे. और ये कंफर्टेबल जर्नी नहीं है, ज्ञान मार्ग हर एक के लिए होता ही नहीं है, ठीक है ना. लेकिन हम फिर भी हम ये कर रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है. क्योंकि अब तक हम क्या सोचते आए हैं, मानकर आए हैं कि अच्छे कर्म करो, उससे ही सब होता है कि नहीं. हमको सोसाइटी ने यही सिखाया है कि तुम अच्छे कर्म करो. हम लोग कर्मों में ही फंसे हुए हैं. यहाँ पे उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है शंकराचार्य ने, कि कर्म से आपका अज्ञान नहीं जा सकता, अच्छे कर्मों से भी नहीं, और ना जो अज्ञान की वजह से उसके जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग है, या जो भी आपके अफेक्ट्स हैं, वो भी नहीं जाएंगे अच्छे कर्म करने से. सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही आपका अज्ञान दूर होगा. और कर्म चाहे सेल्फिश हो, हम सोचते हैं कि अगर हम सेल्फलेस कर्म करें, निष्काम कर्म करें, तो वो बहुत अच्छा होता है, उससे हमारा सब कुछ हो जाता है. नहीं, नहीं होता. सेल्फलेस कर्म करने से आपका क्या होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, बस इतना ही होगा, उससे ज्ञान नहीं होगा और उससे आपके बंधन भी नहीं कटेंगे, बंधन बिल्कुल नहीं कटेंगे। हमें यहाँ पे फिर से क्यों समझना है, देखो ये शुरू के जो चैप्टर्स हैं ना, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंस बताई गई है ज्ञान की, गुरु की और आत्मबोध की। पहले तो यही जानना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं आसपास और हम किन लोगों से इम्प्रेस होते हैं, अगर चलो ठीक है हम उनको भी छोड़ दें कि जो धनी है, जो पावर में है या जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है उनको छोड़ दो, फिर हम देखते हैं अरे ये बहुत परोपकारी हैं, ये तो बहुत दान पुण्य करते हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो हमेशा अच्छे से बात करते हैं, इनके घर जाओ इतना अच्छा लगता है इनसे बात करके, है कि नहीं, फिर हम उसमें हो जाते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे कैटेगरी के वो हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो लोग बुरे हैं, लेकिन वो अच्छे होते हुए भी अगर उनको ज्ञान नहीं है, अगर वो नहीं जानते कि वो कौन है, तो यहाँ पे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि निष्काम बहुत सारे लोग हैं, बहुत, क्योंकि लोग जानना ही नहीं चाहते कि वो कौन है और वो उसी साइकिल में फंसे हुए हैं, जन्म और मृत्यु के साइकिल में चले जा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो लोग मतलब अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो थोड़े ख़राब होते हैं, जो थोड़े दम्भी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनको फिर भी क्या होता है, उनको दुख सताता है कि मैं बहुत ख़राब हूँ तो मुझे कुछ तो जानना करना है। कभी कभी क्या होता है वो लोग आ जाते हैं ये जानने के लिए कि हमें जानना है मुझे खुद को या कुछ और करना है, लेकिन जो बड़ा अपने आप को सोचे हुए है कि वो बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छा चल रहा है या वो बहुत परोपकारी है, वो शायद ना भी करे। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जिन लोगों की लाइफ उनके हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है, जैसे बहुत पैसा है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, सब कुछ, लाइफ अच्छी है, उनको लगता है हमें क्या करना है, वो तो हंसते हैं, उनको क्या लगता है कि अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आप ढूंढते हो कि आपको यू नो कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाओ, हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जिसकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो बल्कि आ जाता है ना, उसके लिए ईजी हो जाता है यहाँ पे आना, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो उन लोगों को लग रहा है हम बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप शंकराचार्य से पूछो तो जो भी अपने आप को जानना चाह रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट जो बस अभी संसारिक चीज़ों में ही खुश है। और उसका रीज़न क्या है, बस हमें एक चीज़ याद करनी है कि कुछ भी कितना भी अच्छा हो संसार में, आपके नेचर में, आपके माइंड में, ये सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। और फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है, और ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक सद्गुरु से ही मिलता है, बिना सद्गुरु के ज्ञान पॉसिबल ही नहीं है। मिल सकता है, हाँ यहाँ पे वो क्यों बोल रही है पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली पॉसिबल है, लेकिन शायद करोड़ों में कोई एक होता है जो इतना स्ट्रांग, मतलब उसकी इंटेलेक्ट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बिना गुरु के भी जान पाता है, करोड़ों में कोई एक, ज़्यादातर बाकी लोगों को गुरु की ज़रूरत लगती है। और ऐसा भी होता है जब ज्ञान मिलता है, जब शिष्य तैयार हो जाता है, उसे ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान मिलने के बाद उसको लगता है अरे ये तो इतना सिंपल था, अरे ये तो मैं खुद ही जान लेता, इसमें क्या था, तो वो मिलने के बाद बोलता है ये तो मैं खुद ही जान लेता, लेकिन अब तक क्यों नहीं जाना फिर। तो ऐसा है, लगता है कि मिल जाता लेकिन मिलता नहीं है। तो इसीलिए बार बार यहाँ पे गुरु की इम्पोर्टेंस बताई गई है। और ज्ञान के बिना आत्मबोध नहीं हो सकता, और आत्मबोध जब तक नहीं होगा तब तक कोई मुक्ति नहीं है, लिबरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत बहुत क्लियर है कि सद्गुरु से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से आपको आत्मबोध मिलेगा। फिर यहाँ पे ना गुरुमा ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है बाबा बुल्ले शाह का, कि जैसे आपको पता है मुस्लिम्स में लोग हज पे जाते हैं, तो कुछ लोग हज पे जा रहे थे, वो जाते रहते हैं, और कई लोग होते हैं ना, जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि अरे हम हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं या हम हर दो महीने वहाँ जाते हैं, उसमें भी लोग बहुत अपने आप को समझते हैं कि बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हज पे जा रहे थे कि अरे बुल्ले शाह तुम तो हज पे नहीं गए, जब तक तुम हज पे नहीं जाओगे तब तक तो तुम्हें अल्लाह का वो मिलेगा नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, तो तुम भी चलो हमारे साथ। तो बहुत उसने कोशिश करी उनको कन्विंस करने की। तो बुल्ले शाह जी ने क्या किया, वो उठे और उनका जो गुरु जहाँ पे रहता था उसके साथ चक्कर लगा के आ गए, गुरु के चारों तरफ उन्होंने सात चक्कर लगा लिए. उन्होंने बोला अरे वो जो ईंट पत्थर का है वो मुझे क्या ज्ञान देगा, वो मेरे कहाँ से ब्लेसिंग्स देगा, मेरे लिए तो मेरा गुरु ही हज है. तो गुरु के चक्कर लगा लिए तो हो गया. इसको हम उससे भी कर सकते हैं, जैसे गणेश जी ने लगाया था ना शिव और पार्वती के, सबको पता होगी वो स्टोरी कि ये हुआ था कि आप पूरे संसार का ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए. तो उन्होंने अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा लिए थे. बिल्कुल ऐसे बुल्ले शाह ने अपने गुरु के चारों तरफ लगा लिए. तो उन्होंने क्या बोला, माय मास्टर इज गिविंग मी ज्ञान, व्हाई ऑन अर्थ वुड आई वांट टू लीव दिस पैराडाइज टू विजिट सम लाइफलेस बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार. तो जो मुझे ज्ञान दे रहा है वो ही मेरे लिए सबसे सही है. तो फिर से शंकराचार्य बोल रहे हैं देयर इज नो लिबरेशन विदाउट ज्ञान, क्योंकि जो भी आपकी सफरिंग है, जितना भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका सिर्फ एक रीज़न है. हम क्या सोचते हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है वो मेरी मदर इन लॉ की वजह से है, डॉटर इन लॉ की वजह से है, मेरे हस्बैंड की वजह से है, मेरे बॉस की वजह से है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से है. नहीं, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अज्ञान की वजह से है. सिर्फ अज्ञान, एक ही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं. और वो अज्ञान कैसे जाएगा, वो अज्ञान आपका ज्ञान से ही जाएगा. और वो जब आपका अज्ञान जाएगा, वो जब आपको ज्ञान मिलेगा, उसके बाद कोई सफरिंग नहीं रहेगी, कोई बंधन नहीं रहेगा. और सिर्फ आज के लिए नहीं, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, हमेशा 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 के लिए, एटर्नली यू विल बी फ्री आफ्टर दैट. फिर यहाँ पे ना गुरु माँ ने इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया है. वो कहती हैं कि लेकिन ज्ञान को लेने के लिए पहले वो जो है ना, जो हमने पिछली बार भी बात किया था, मुमुक्षुत्व, एक चाह कि मुझे जानना है, वो कहाँ है, वो ही नहीं है. वो बोलती हैं अरे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि बंधनों से मुक्त हो जाओगे, लेकिन तुमको तो अभी अपने बंधन बंधन लगते ही नहीं है. तुम तो अपने बंधनों में इतने खुश हो, इतने लिप्त हो, तुमको वही अपनी फैमिली, अपने पैसे, अपनी ज्वेलरी, अपना ये मेरा वो मेरा घर, और वो तुमको बंधन ही नहीं लगता. तो तुमको जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हारे, मतलब एक तरह से देखा जाए कि जो सांप है, तुमको तो अभी वो सांप ही नहीं नज़र आ रहे. तुमको जब वो सांप जैसे नज़र आएंगे तभी तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी ना. जब तक तुम्हें वो नज़र ही नहीं आ रहे तो तुम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो कैसे होगा. और तुम्हारा अज्ञान तुम्हें इतना परेशान ही नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर वो उठा नहीं रहा है. देखो जैसे कभी कभी होता है ना, अरे यहाँ पे तो सारी लेडीज हैं, अरे मेरे बच्चे का फोन नहीं आया, वो गया था. तो हम कैसे हो जाते हैं ऊपर नीचे, मैंने तो बहुत लेडीज को देखा है, अरे बच्चे का फोन नहीं आया, पागल हुए पड़े, उससे बात नहीं हुई, है ना. उसको लेके तो तुम ऊपर नीचे हो जाते हो, लेकिन क्या ये सोच के ऊपर नीचे होते हो कि मैं अभी भी अज्ञानी हूँ, मुझे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ. जिस दिन तुम्हें उसको सोच के भी वो होगा ना, इतने हॉल उठेंगे उसके अंदर कि वो कलेजा छाती में, वो कहते ना छाती से बाहर हो रहा है मेरा कलेजा, तब तक कैसे होगा. है ना, वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो क्यों जरूरी है इतनी तड़प. क्योंकि जब तक वो तड़प नहीं होगी तब तक तुम इस ज्ञान को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे, उसको ले ही नहीं पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे. ज्ञान क्या है, ज्ञान तो एक मिनट का है, एक मिनट का भी नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता उसको बोलने में. लेकिन उसको पकड़ने की वो होनी चाहिए ना, स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ये ऐसा है कि सपोज जैसे सब लोग चाहते हैं हमारे पास बहुत पैसा हो, ऊपर से भगवान बोले मैं ना तुम्हारे ऊपर 500 टन सोना भेजने वाला हूँ अभी, लेकिन तुमको ना पकड़ना आना चाहिए 500 टन. तो हम क्या पकड़ पाएंगे, हम तो वहीं मर जाएंगे उसके नीचे, है ना. हमारे में स्ट्रेंथ ही नहीं है उसको होल्ड करने की. वो कह रहा है मैं 500 टन सोना देता हूँ तुम्हें. तो यही है, ज्ञान देने को तो गुरु तैयार है, पर आपको तैयार होना है उसको पकड़ने के लिए. और वो तैयारी में सबसे जरूरी चीज है कि तड़प, कि हाँ मुझे जानना है. इसका एक और है ना, वो कहते हैं एक बार, मैं गुरु कौन से गुरु का नाम भूल गई हूँ किसमें है, कि इन्होंने एक था जो शिष्य था, वो बार बार जाता था गुरु के पास कि अब तो मुझे करा दो, अब तो मुझे बता दो. तो वो गुरु बोलते थे अभी तेरा टाइम नहीं आया, मतलब उसको टालते रहते थे. तो फिर एक बार बहुत परेशान उसने बोला कि आप मुझे क्यों नहीं बताते हो. कहता अच्छा चल मैं तुझे करता हूँ. तो उन्होंने गुरु उसको लेके गए शिष्य को, और वहाँ पे एक नदी थी, और उसका पीछे से ऐसे बाल पकड़ के उसको नदी के अंदर उसका सर डाल दिया. और वो तड़प रहा है बाहर आने के लिए, उसको मतलब काफी देर तक उन्होंने अंदर ही रखा और फिर उसको बाहर निकाला काफी देर के बाद, जब वो बिल्कुल तड़प तड़प के बिल्कुल मरने वाला हो गया तब बाहर निकाला। तो फिर उन्होंने बोला, अच्छा एक बात बता कि जब तू वहां पे अंदर था तब तुझे क्या चाहिए था, किस चीज के लिए तड़प रहा था? कहता सांस। कहते और कुछ दिमाग में आया कि गुरुजी ज्ञान दे दें, या मेरी वो वहां पे पत्नी परेशान हो रही है, या मेरे बच्चे के लिए करना है, ये कुछ ध्यान में आया था जब पानी के अंदर था? कहता क्या बात कर रहे हो, उसमें तो सिर्फ सांस लेने की सूझ रही थी और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने कहा जिस दिन तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ज्ञान लेने की भी इतनी इच्छा होगी, इतनी तड़प होगी कि तुझे और कुछ सूझेगा ही नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं सूझेगा, उस दिन सिर्फ और सिर्फ उस दिन तुम तैयार होगे। तो वो बार बार यही हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो अभी उसी पॉइंट तक ही नहीं पहुंचे कि हमारी तड़प इतनी बढ़ जाए, आए नहीं है वहां पे हम। जैसे कि एक भरे हुए पेट को भूख नहीं लगती है ना, अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो कितना भी अच्छा खाना परोसा हुआ हो आप नहीं खाओगे, मन नहीं करता आपका खाने का, और जब भूख लगी हो बहुत जोर से तब होता है। तो ऐसे ही इसकी भी भूख लगनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको पता है गुरुओं की कमी नहीं है, सद्गुरुओं की भी कमी नहीं है, बताने वालों की भी, ज्ञान की भी कमी, सिर्फ और सिर्फ भूख की है कि वो भूख ही नहीं लगी है, कि वो इच्छा ही नहीं है इतनी। यहाँ पर जो मेरे गुरुजी हैं ना, वो तो मतलब इतना ओपनली सब कुछ सिखा रहे हैं, कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो बोलते हैं, कहते मैं तो यहाँ पे थालियाँ परोस के रखी हुई हैं सबके लिए, कहते थाली परोस के मैं रखा हूँ, लोग आते हैं बोलते हैं अच्छा अच्छा आपने कढ़ी सर्व की हुई है, आपने दाल क्यों नहीं बनाई, अच्छा आपने आलू गोभी रखी हुई है, हमें तो पनीर चाहिए था। कहते तुम सोचो जिसको भूख लगी होगी ज़ोर से वो ये पूछेगा, जिसको भूख लगी है वो सीधा टूट पड़ेगा खाने के ऊपर, और यहाँ पे लोग आके अच्छा ये बता रहे हो, ये नहीं बता रहे, वो नहीं कर रहे, इसी में पड़े रहते हैं लोग। कहते उसी से पता लग जाता है कि भूख नहीं है, क्योंकि जो भूखा है उसको सिर्फ खाना चाहिए, उसको ये नहीं बॉदर करना है कि क्या है। तो यहाँ पे खाने का मतलब है, जैसे वो बोलेंगे अच्छा आप वो वाला मार्ग नहीं बताते, अच्छा आप ये वाला टेक्निक नहीं बताते, अच्छा आप ध्यान नहीं कराते, अच्छा आप वो नहीं करते, तो मतलब उनको भूख नहीं लगी है। ठीक है, तो भूख लगनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने आप को भी चेक करना है कि क्या मुझे उतनी भूख लगी है क्या, है ना। फिर वो कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये ज्ञान शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों? इस विश्वास में और इस आशा में कि शायद एक को तो भूख लगी होगी, है ना, कम से कम जिसको भूख लगी होगी उसको तो पता लग जाएगा यहाँ पे खाना परसा हुआ रखा है, आ जाओ और खा लो। इस होप में ये मैं फिर भी ज्ञान को शेयर कर रही हूँ। और फिर ये लास्ट पैराग्राफ में बोलती हूँ, बहुत अच्छा है, लेट समबडी एल्स रीड। और इंग्लिश की किसके पास है? शिवानी, यू हैव इंग्लिश?
यस।
कैन यू रीड द लास्ट पैराग्राफ, बट दोज फॉर्चुनेट फ्यू?
यस, बट दोज फॉर्चुनेट फ्यू हु सीक ज्ञान, देयर लाइफ विल चेंज ड्रामेटिकली आफ्टर लिसनिंग टू दीस वर्ड्स ऑफ विजडम। दे आर वेल ऑन द पाथ ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस। आई एम शोइंग यू द पाथ ऑफ लिबरेशन। I am imparting words of Gyan which will destroy all bondage, attachment, fear, suffering. This is the Gyana which liberated Arjun. This is the Gyan which made Lehna an eligible successor of Guru Nanak Dev's legacy. This is the Gyan which made a Kabir, a Ravidas, a Ramanuj, a Dadu Dayal. The Gyan which transforms an ordinary person into a saint. I am talking about that very thing.
How powerful is this? अब कोई हिंदी में पढ़ दे।
मैं ये मोक्ष की राह तुम्हें दिखा रही हूँ, देखो मैं उस ज्ञान को श्रवण करा रही हूँ जिस ज्ञान को सुनकर तुम्हारा सब भय भव भय बंधन टूट जाएगा। ये वो ज्ञान है जिसे सुनकर अर्जुन मुक्त हुआ। ये वो ज्ञान है जिसे सुनकर भाई लेना गुरु नानक की गद्दी के योगी हुए थे। ये वो ज्ञान है जिससे कबीर कबीर हुए, रैदास रैदास हुए, रामानुज रामानुज हुए, दादू दादू हुए। संत जिस ज्ञान से संत बनता है ये उसी ज्ञान की कथा हो रही है। ये बात अलग है कि गुरुओं को नमस्कार करना सबको अच्छा लगता है, परंतु अपना ज्ञान दूर कर अपने अंदर गुरु को जागृत कर लेने का भाव सबके अंदर नहीं आता।
देखिए कितना अच्छा ये इन्होंने बताया है कि हमको ना बहुत होता है कि दूसरों को हम नमस्कार करने में तो रेडी हैं, कि अच्छा गुरु नानक देव जी थे, अर्जुन थे, लेहना थे, कबीर, रविदास ये थे, वो तो बहुत बड़े थे, लेकिन हाँ मैं तो बहुत छोटी मोटी चीज़ हूँ, मैं तो कभी वहाँ पे हो ही नहीं सकता। और अगर ये जो बताया जा रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी पता है क्या हमारे ना माइंड की एक लिमिटेशन है, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये इतनी मुश्किल है कि मैं नहीं जान सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सच में आपके अंदर वो भाव जग जाए, वो भूख जग जाए, हर एक के लिए पॉसिबल है, हर एक के लिए इस ज्ञान को लेना पॉसिबल है, वो ज्ञान जो एक साधारण इंसान को संत बना देता है, वो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की बात हो रही है। तो ये मत सोचो कि वो ज्ञान औरों में होता था, या फिर हमारे दिमाग में कभी कभी होता है अरे पहले ऐसे गुरु होते थे, आजकल तो ऐसे गुरु ही नहीं मिलते जिनके पास ये ज्ञान हो। ये सब हमारे मन के अंदर लिमिटेशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी थे गुरु, आज भी हैं, कल भी होंगे, हमेशा जब तक ऐसे लोग रहेंगे जिनको ज्ञान की ज़रूरत है तब तक ज्ञान देने वाले गुरु भी हमेशा रहेंगे। और जिस दिन आपके अंदर वो तड़प जग जाएगी आपको गुरु भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बस लेकिन वो आ जाना ज़रूरी है, और अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता, या पता नहीं मुझे कितने जन्म लगेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप इंजीनियर बन सकते हो या नहीं, डॉक्टर बन सकते हो या नहीं, 5-10 करोड़ रुपया कमा सकते हो या नहीं, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका लाइफ में, आपकी लाइफ में शादी होगी, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की। लेकिन अगर आप इस पाथ पे चलते हो, ये सब पत्थर छोड़ के आप उस सबसे बड़े हीरे को ही नूर के लिए काम करोगे, तो वो आपको फॉर श्योर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है, वो कहीं से लाना नहीं है, वो आप कोहिनूर लेकर ही आए हो, सिर्फ आपको दिख नहीं रहा है। और गुरु क्या करता है, गुरु आपको देता नहीं है, गुरु सिर्फ दिखाता है कि ये रहा तुम्हारा कोहिनूर, ये रहा, और जैसे ही वो पॉइंट आउट करता है आपको दिख जाता है, बस इतनी सी बात होती है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्स पे, नेक्स्ट चैप्टर, वर्स 4। That which appears finite because of ignorance, in the light of gyan, its infinite nature becomes apparent. The Atman is self-illuminating. Shankaracharya explains this statement with the following analogy. I'll just stop here. तो अब हम थोड़ा सा, अब हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा था ना। देखो ये पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट हिंदी में भी कोई पढ़ दे।
अवचिन्न इव अज्ञानात्, अज्ञान की वजह से जो परिचिन्न दिखेगा, ज्ञान हो जाने से वही अपरिचिन्न दिखेगा। परिचिन्न का मतलब है जो ढका हुआ है, जैसे हमारे सामने कोई चीज, एक पर्दा आ गया है और हमको वो चीज, पीछे की चीज हमको दिख नहीं रही है, तो वो किसके कारण है? वो ज्ञान के कारण। स्वयं प्रकाशते ही आत्मा, आत्मा स्वयं प्रकाश है। अब यहाँ से पहला उदाहरण देना शुरू कर रहे हैं कि मेघा पाए अशुनभ अशुमान इव, जैसे आकाश में बादल छाए हो और चमचमाता हुआ सूर्य उन बादलों से आच्छादित हो गया हो। आच्छादित माने ढका हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन काले काले मेघों ने सूर्य को ढक दिया या नहीं? हालांकि सूर्य तो बड़ा दूर है धरती से, परंतु जब काले बादल छा जाते हैं तो दिन में भी रात हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आंटी।
उसका मतलब नहीं कि सूर्य नहीं है, ऐसा नहीं है, सूर्य तो है, हमको नहीं दिख रहा बस।
बिल्कुल, तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा क्लू दिया है हमें, एग्जाम्पल वो दिया है, जैसे मैंने आपको भी बोला था कि वो हीरा आपके पास ऑलरेडी है, सबके पास है, हर एक के पास वो कोहिनूर हीरा है, लेकिन अज्ञान के कारण वो नज़र नहीं आ रहा, एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक आँखों के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। वही जो उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि सूरज तो है, और सूरज कितना दूर है धरती से, लेकिन जैसे ही बादल आते हैं हमें वो सूरज दिखना बंद हो जाता है। लेट अस से कोई बच्चा है, वो अभी पहली बार उसने सूरज नहीं देखा, बाहर देख रहा है बादल हैं, आप उसको बताओ कि पीछे सूरज है इसके, तो उसको तो सूरज नजर ही नहीं आ रहा, वो तो उसको लगेगा कि सूरज तो है ही नहीं, सिर्फ बादल हैं, है ना। लेकिन अभी बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जो जानता है उसको पता है कि बादल दिख रहे हैं तो भी सूरज हमेशा है वहाँ पे। ऐसे ही जो आत्मन, जो आप हो, जो रियल सेल्फ है, हम यहाँ पे बात करते हैं एक मैं, जिसको मैंने मैं माना हुआ है, मतलब ये शरीर मन और बुद्धि, इसको मैं मानता हूँ, और एक और मैं है जो वो कोहिनूर हीरा है, जो वो आपका असली मैं है, वो असली मैं हमेशा आपके साथ है और वो कभी भी आपसे जुदा होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता, वो हमेशा था, है और रहेगा। और उसके ऊपर ये मैं है, ये छोटा मैं, तो हम छोटा मैं बड़ा मैं बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारी गलती, हमारी भूल क्या हो गई है कि इस छोटे मैं को मैंने मैं मान लिया है और उस बड़ा मैं, क्योंकि वो नज़र नहीं आता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो नज़र नहीं आता। जैसे कि बादल, काले बादलों में सूरज भी नज़र नहीं आता, पर क्या सूरज नहीं है? सूरज है। तो यहाँ से हमारी अब जर्नी शुरू होती है इसकी।
मोनिका, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? शरीर मन बुद्धि, वे आई कुडंट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली।
व्हिच वन? दिस ओनली लास्ट,
द फर्स्ट वन वेयर यू स्टार्टेड ना, शरीर मन बुद्धि इज मे एंड देयर इज अनदर वन फ्रॉम देयर, कैन यू जस्ट रिपीट दैट टू लाइन?
श्योर श्योर, डेफिनेटली। देखो, मैं हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं, अगर कोई मुझे पूछे अपना इंट्रोडक्शन दो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूंगी? चलो, मेरा नाम मोनिका है, मैं इस घर में रहती हूँ, मतलब ये बॉडी, या मैं ये बोल सकती हूँ मैं मोटी हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी शक्ल ऐसी है, रंग ऐसा है, मतलब सब कुछ मेरे शरीर के बारे में है ना। या फिर मैं बोल सकती हूँ मैं इसकी बेटी हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसकी माँ हूँ, ये मैं हुआ। या मैं बोल सकती हूँ मैं ना बड़ी इमोशनल हूँ, या मैं बोल सकती हूँ मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ। यहाँ पे जो भी मैं है, या मैं बोलूँगी मैं पूना में रहती हूँ, ये मैं किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है ना? शरीर, मन और बुद्धि, तीन चीज़ों के साथ सबसे पहले, और फिर रिश्तों के साथ, लोकेशन के साथ, कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे फादर हैं, या जो भी है मेरे फ्रेंड्स है ना, यही सब मैं है। अब यहाँ पे हमें क्या जानना है कि ये जो छोटा मैं है, यही हमारी भूल है, यही हमारी भूल है। ओके, जो असली मैं है वो इन सब के पीछे है। और क्या होता है, देखो, क्या मैं हमेशा वाइफ थी? नहीं थी ना। एक समय था जब मैं पत्नी नहीं थी, एक समय था जब मैं माँ नहीं थी, एक समय था जब मैं बहू नहीं थी, एक समय था जब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं थी। तो जिन चीज़ों को मैंने आज मैं बनाया हुआ है, एक समय था जब वो मैं तो थे ही नहीं, तो ये मैं तो जुड़े हैं, है ना, कुछ मैं जुड़े हैं। अच्छा, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, लेट अस से इवन जब मैं अपनी मम्मी के वूम्ब में ही थी, तब भी अभी मैं बहन बेटी तो नहीं बनी थी ना, अभी भी बाहर नहीं आई थी, उसके बाद ही सब शुरू हुआ। तो ये जो मैं है, ये बदले जा रहा है कि नहीं? आज मेरे पेरेंट्स नहीं रहे दोनों के दोनों, तो मेरा बेटी का तो खत्म ही हो गया, है कि नहीं? तो ये मैं जिससे मैं आइडेंटिफाइड हूँ, ये तो बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए मैं के पीछे एक और मैं है जो हमेशा रहता है, जो जब मैं पैदा नहीं हुई थी इस शरीर में तब भी था, और जब मैं नहीं रहूँगी तब भी होगा, और हर समय मेरे साथ है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, मुझे वो नज़र नहीं आता, तो मैंने इसको मैं बना लिया। और ये मैं क्योंकि बदलता रहता है, तो इसके साथ मैं भी ऊपर नीचे होती रहती हूँ। जब ये मैं अच्छा होता है तो सब अच्छा हो जाता है, जब इस मैं में कुछ खराब होता है तो नीचे खराब होता है। हमारी लाइफ यही तो है कि नहीं? Isn't it?
Yes. Yes.
हमारे इस बॉडी माइंड के साथ कुछ भी अच्छा, जो भी मतलब बाहर की सिचुएशंस, परिस्थितियाँ जो अच्छा करती हैं, तो मैं अच्छा सोचता हूँ, सब मैं बहुत अच्छा हूँ, और खराब हो जाता है तो मैं सोचता हूँ मैं बहुत खराब हूँ, जबकि ये तो हमेशा बदल रहा है। तो हमें क्या करना है, उस पीछे वाले मैं के पास जाना, बस और कुछ नहीं करना। तो ये जो हमारा मैं है, ये झूठा है, असली मैं वो है, और उसी को जानना है, उसी को जानना है। और उसको जान गए, जैसे मैंने बोला, सारे बंधन, सारा दुख सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं मृत्यु, इस शरीर की जब मृत्यु भी हो जाएगी, वो मैं तो फिर भी होगा, है ना, फिर से जन्म भी लिया, मृत्यु कितनी बार भी हो जाए, वो मैं तो हमेशा रहेगा। चाहे मैं नरक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, कल को भगवान बन जाऊं, कल को राक्षस बन जाऊं, वो जो मेरा मैं है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा रहता है। और इस मृत्यु लोक में, जो हम पृथ्वी लोक पे आते हैं, ये सबसे अच्छी जगह है उस मैं को जानने की। और यहाँ पे इसीलिए हमने क्या बोला कि जो हम एज अ ह्यूमन आए हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन इज द मेन पर्पस, यहीं पे जाना जा सकता है उसको, यहीं पे है। और गुरु भी पृथ्वी लोक पे ही मिलते हैं। पृथ्वी लोक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि गुरु लोग सब यहीं आते हैं,